दिन भर 24 मार्च दिन शुक्रवार, मैं हूं संदीप सोनी। एयर इंडिया के कर्मचारी को चप्पल से पीटने के आरोप के बाद शिवसेना सांसद गायकवाड़ पर 5 एयरलाइंस ने प्रतिबंध लगाया।
किसी व्यक्ति पे हाथ उठाना, सरकारी कर्मचारी हो, कोई सामान्य व्यक्ति भी हो, लोक प्रतिनिधियों ने अपने एक गरिमा मेंटेन करनी चाहिए।
चीन और नेपाल पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे, चीन के रक्षा मंत्री नेपाल में।
भारत को काफी चिंता है, बड़ी चतुरता से अब ये खेल और आगे पेचीदा होगा।
विवेचना में बात करेंगे 40 साल पुरानी जनता पार्टी सरकार की।
मैं अभी पटना में था तो जेपी बहुत नाराज थे, देखो क्या हो रहा है हिंदुस्तान का, देश का। तो मैंने कहा मुरारजी भाई आपको जाना चाहिए पटना।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। एयर इंडिया के कर्मचारी पर हमला करने के आरोप में शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ पर एयर इंडिया और फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध के बाद अब गायकवाड़ कई एयरलाइंस में हवाई सफर नहीं कर पाएंगे। इस मामले में एयर इंडिया और फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने एक बयान जारी किया है। इस फेडरेशन में इंडिगो, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट और गो एयर शामिल हैं। सब ने इस वाक्य की कड़ी निंदा की है। इन्होंने गायकवाड़ पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को कई साल की हिरासत के बाद आज रिहा कर दिया गया है। अरब बसंत क्रांति के बाद उन्हें अपदस्थ कर हिरासत में लिया गया था। उनके वकील ने बताया कि उन्हें अस्पताल से रिहा किया गया है जहां वो हिरासत में बंद थे। वो अपने गृहनगर लौट रहे हैं। इसी महीने मिस्र की उच्चतम अदालत ने उन्हें 2011 की क्रांति में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की हत्या करवाने के मामले में बरी कर दिया था। इराक के प्रभावशाली इमाम मुक्तदा अल सद्र ने चुनाव आयोग में सुधार न किए जाने पर चुनाव का बहिष्कार करने की धमकी दी है। बगदाद में अपने समर्थकों की एक बड़ी रैली में उन्होंने कहा कि भ्रष्ट नेता अपने हितों को साधने के लिए देश में विवादों को बढ़ावा दे सकते हैं। चुनाव पारदर्शी होने चाहिए और इनका संचालन पक्षपाती या फिर भ्रष्ट लोगों के पास नहीं होना चाहिए जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए काम करते हैं। मौजूदा चुनाव कमेटी और बेकार चुनावी कानून से सत्ताधारी पार्टियों को फायदा होगा। हमें आने वाले चुनावों का बहिष्कार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये थे मुक्तदा अल सत्र के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। लंदन में पुलिस ने बुधवार को संसद के सामने हुए हमले को अंजाम देने वाले संदिग्ध को साथियों को पहचानने में मदद के लिए लोगों से अपील की है। बुधवार को संसद के सामने एक पुलिस अधिकारी और कुछ दूरी पर 3 लोगों को मार दिया गया था। पुलिस का कहना है कि संदिग्ध का जन्म के बाद उसका नाम रखा गया था एड्रियन रसल अजाओ और उसके बाद उसने अपना नाम बदलकर खालिद मसूद रख लिया था। पुलिस ने अपील की है कि जो भी संदिग्ध हमलावर के बारे में जानता है वो जांच में पुलिस की मदद करे। कल रात 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसी के साथ पुलिस की हिरासत में इस मामले से जुड़े 9 लोग हिरासत में हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद ने म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय के साथ हो रहे कथित अत्याचार की जांच के लिए एक जांच आयोग भेजने का फैसला किया है। संयुक्त राष्ट्र ने पिछले महीने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि सुरक्षा बल म्यांमार में सामूहिक हत्याएं और गैंगरेप करते आए हैं जिससे हजारों रोहिंग्या मुस्लिम देश छोड़कर बांग्लादेश जाने के लिए मजबूर हुए हैं। अख्तारा एक ऐसी 16 साल की लड़की है जो कि म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश के शरणार्थी शिविर में शरण लेने के लिए मजबूर हुई थी। उसने अपनी आप बीती सुनाई।
तो हमारे घर मजे रायतो सरगो बजे 12 जो मिलिट्री
12 सैनिक भोर 4 बजे हमारे घर में घुस गए। मेरे माता पिता उस वक्त घर में नहीं थे। उन्होंने मेरा उत्पीड़न किया। उन्होंने 1.5 घंटे तक एक के बाद एक बलात्कार किया और फिर चले गए। मैं रो रही थी और फिर मेरे रिश्तेदार और गांव वाले मुझे वहां से ले आए। 6 दिन के बाद मैंने बांग्लादेश में प्रवेश कर लिया था। ये थे अख्तारा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फ्रांस में राष्ट्रपति पद के लिए धुर दक्षिणपंथी उम्मीदवार मारिन ली पेन से मॉस्को में मुलाकात की है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वो अगले महीने फ्रांस में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करना चाहते लेकिन इसमें शामिल हो रहे सभी पक्षों से बातचीत करने का उन्हें अधिकार है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी है और आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी रेडियो से दूसरी सभा दिन भर संदीप सोनी के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत उस खबर से जिसने जनता को लोकतंत्र के मंदिरों में बैठने वाले अपने नुमाइंदों के बर्ताव के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिवसेना के सांसद रविंद्र गायकवाड़ की। एयर इंडिया के कर्मचारी को चप्पल से पीटने के आरोप के बाद शिवसेना के सांसद गायकवाड़ पर 5 एयरलाइंस ने प्रतिबंध लगा दिया है। विपक्षी दलों ने गायकवाड़ के कथित व्यवहार की निंदा की है और उन्हें लोकसभा से निलंबित करने की मांग की है। एक रिपोर्ट के साथ अश्विन अघोर।
एयर इंडिया के कर्मचारी से मारपीट के बाद शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ मुश्किलों में गिर गए हैं। जहां एक ओर देश की सभी हवाई कंपनियों ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है, वहीं उनकी अपनी पार्टी भी गायकवाड़ से किनारा करती नजर आ रही है। रविंद्र गायकवाड़ गुरुवार को पुणे से दिल्ली का सफर कर रहे थे। उनके पास बिजनेस क्लास की टिकट थी और विमान पूरी तरह इकोनॉमी क्लास था। यह देखकर गायकवाड़ गुस्सा हो गए और विमान कर्मियों से बहस करने लगे। जब विमान दिल्ली पहुंचा तब गायकवाड़ ने एयर इंडिया के एक कर्मचारी से मारपीट की। इस घटना की सभी ने कड़े शब्दों में निंदा की है। विपक्षी पार्टियों ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर लोकसभा से गायकवाड़ के निलंबन की मांग की। वहीं शिवसेना ने भी इसे उनसे इस घटना के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। शिवसेना प्रवक्ता मनीषा कायंदे ने बीबीसी को बताया,
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये एक चुने हुए लोक प्रतिनिधि का इस प्रकार से बर्ताव जो है, शिवसेना उसका कतई समर्थन नहीं करती है। किसी व्यक्ति पे हाथ उठाना, सरकारी कर्मचारी हो, कोई सामान्य व्यक्ति भी हो, लोक प्रतिनिधियों ने अपने एक गरिमा मेंटेन करनी चाहिए। फिर भी ये क्यों हुआ, इसकी हम मांग भी करते हैं और पार्टी भी उनसे एक्सप्लेनेशन, माननीय उद्धव जी ठाकरे स्वयं उनसे एक्सप्लेनेशन लेने वाले हैं।
ये थी मनीषा कायंदे। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस ने गायकवाड़ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पार्टी का कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष इसमें हस्तक्षेप करे। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा,
इस पूरी घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जिस तरह से शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ जी ने अपना बर्ताव किया है, ये लोकतंत्र में एक सांसद से अपेक्षित नहीं है। और जहां तक बात है शिवसेना की सांसद की, तो इसके पीछे शिवसेना की जो विचारधारा है वो ही नजर आती है। महाराष्ट्र में जिस तरह से बहुत सारी घटनाओं में देखा गया है कि कानून व्यवस्था हाथ में लेने की बात हो, तो ऐसे बार बार वाकियात सामने नजर आ रहे हैं और हम निश्चित तौर पर इस विचारधारा का विरोध करते रहेंगे। और जहां तक बात है इन सांसद, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मांग हमारी रहेगी।
ये थे सचिन सावंत। रविंद्र गायकवाड़ की मुश्किलें यहीं थमती नजर नहीं आ रही है। उनके अभद्र व्यवहार की वजह से फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने गायकवाड़ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए उन्हें ब्लैकलिस्ट करने का फैसला किया है। इसके चलते गायकवाड़ अब किसी भी कंपनी के हवाई जहाज से सफर नहीं कर सकेंगे। अपने तय कार्यक्रम के अनुसार रविंद्र गायकवाड़ शुक्रवार को एयर इंडिया के जहाज से दिल्ली से पुणे आने वाले थे, लेकिन गुरुवार की घटना के बाद एयर इंडिया ने उनकी टिकट रद्द कर दी गई।
ये थे मुंबई से स्थानीय पत्रकार अश्विन अघोर। शिवसेना के सांसद रविंद्र गायकवाड़ से इस पूरे मामले पर उनका पक्ष जानने के लिए हमने बात करने की कोशिश की। लगातार उनके मोबाइल की घंटी बज रही है, लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं। बहरहाल, चप्पल वाले वीआईपी होते कैसे हैं? bbchindi.com पर एक कार्टून के जरिए हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की है। आइए bbchindi.com पर, जहाँ आपके लिए और भी बहुत कुछ है। और अब बात उस देश की जिसे चीन और भारत के बीच सैंडविच की तरह देखा जाता है। जी हाँ, सही समझे आप, हम बात कर रहे हैं नेपाल की, जिसके साथ भारत के रोटी बेटी के संबंध रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड किसी फोरम के सिलसिले में चीन गए हैं और चीन के रक्षा मंत्री काठमांडू आए हुए हैं। क्या है ये माजरा, जानने के लिए काठमांडू में मौजूद बीबीसी संवाददाता फणीन्द्र दहल से मैंने आपसे कुछ देर पहले बात की।
कल चीन के रक्षा मंत्री यहाँ 3 दिन भ्रमण के लिए आए हैं। उन्होंने कल ही अपने नेपाली रक्षा मंत्री से मुलाकात किया और प्राइम मिनिस्टर प्रचंड से भी मुलाकात किया। विशेष गरी ये चीन के जुन वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है, उसमें चीन नेपाल को भी इन्वॉल्व करना चाहता है। चीन के डिफेंस मिनिस्टर है चांग वांग चियान, वो अपना मीटिंग कर रहे हैं और उन मीटिंग में विशेष करके नेपाल चीन डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाने की बात हो रही है। और चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर ने, यहाँ के ऑफिशियल्स ने कहा है कि प्रतिबद्धता जनाई है कि वो नेपाल आर्मी को कुछ मदद करेंगे, हैवी इक्विपमेंट्स वगैरह चीज चाइना देगी नेपाल सरकार को। इसके अलावा अगले महीने नेपाल और चाइना एक पहली बार ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस बार बारे में मैंने यहाँ के रक्षा मंत्री बालकृष्ण खान से बातचीत की थी। उन्होंने कहा नेपाल चीन से अच्छा संबंध रखना चाहती है, भारत से भी वैसा ही अच्छा रिलेशन रखना चाहती है। नेपाल को सब अपना पड़ोसी देशों का गुडविल की आवश्यकता है, ऐसे नेपाल के डिफेंस मिनिस्टर बालकृष्ण खान। और जब यहाँ से चीन के डिफेंस मिनिस्टर कल लौटेंगे, उसके 3 दिन बाद इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी बिपिन रावत काठमांडू आ रहे हैं।
ये थे काठमांडू में मौजूद बीबीसी नेपाली संवाददाता फणीन्द्र दहल। यहाँ सवाल ये उठता है कि नेपाल और चीन को संयुक्त सैन्य अभ्यास करने की क्या जरूरत आन पड़ी और क्या भारत को इससे चिंतित होना चाहिए। यही सवाल रखा मैंने सेवानिवृत्त मेजर जनरल अशोक मेहता के सामने, तो उनका क्या कहना था आइए सुनते हैं।
भारत को काफी चिंता है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज के वजह से नहीं, जो राजनीति खेली जा रही है चीन की तरफ से और जिस तरीके से वहाँ नेपाल में पिछले साल सरकार बनी और फिर टूटी और फिर बनी, इसमें चाइना का काफी योगदान था, तो चिंता की बात, क्योंकि भारत इसको रोक नहीं सकता और ये अगर कोई रोक सकता है तो नेपाल ही रोक सकता है। और किस हद तक नेपाल चाइना को रोक पाएगा, अभी चाइना के डिफेंस मिनिस्टर जो काठमांडू में हैं वो उनको कह रहे हैं कि आपको जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, और उनके पास मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं है। और चाइना अब वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है अभी, तो इसलिए वो उनके पास वो काबिलियत है, भारत के पास इतनी क्षमता नहीं है कि चाइना की तुलना करें। और नेपाल चाहता है कि उसका फायदा हो, जितना वो मदद लेंगे चाइना से उसके लिए उनको कुछ वापस भी तो देना होगा। वो श्रीलंका में बिल्कुल यही बात चल रही है, क्योंकि श्रीलंका में वो डेट फॉर इक्विटी हो रहा है, $1 बिलियन डेट है। नेपाल उस हालत में अगर आ गया तो फिर चाइना का जो प्रभाव है वहाँ पर बहुत बढ़ जाएगा। और अभी मेरा ख्याल ये एक प्लेटून लेवल का एक्सरसाइज है, सबसे छोटे दर्जे का, लेकिन चाइना 2-3 साल से लगा हुआ है कि भाई करो हमारे साथ, आप भारत के साथ तो बटालियन लेवल एक्सरसाइज करते हो, आप भारत में अपने नागरिक उनकी फौज में करते हो, हमारे साथ क्यों नहीं होता ये? तो वो पैरिटी चाहते हैं, और ये अब नेपाल के लिए एक टाइट रोप सिचुएशन है कि ये कैसे बैलेंस करेंगे रिलेशन। एक तरफ चाइना के अपने डॉलर या युआन दिखा सकता है और फेंक सकता है, दूसरी तरफ भारत के पास वो काबिलियत नहीं है उसका मुकाबला करने के लिए। तो भारत का जो डिप्लोमेसी है, कूटनीति और राजनीति, बड़ी चतुरता से अब ये खेल और आगे पेचीदा होगा।
ये थे सेवानिवृत्त मेजर जनरल अशोक मेहता, जो नेपाल में चीन की मौजूदगी पर भारत की चिंता के बारे में बता रहे थे।
बीबीसी इंडिया बोल।
उत्तर प्रदेश में बूचड़खानों के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई, मांस के व्यापार पर निर्भर लाखों मुसलमानों, दलितों और दूसरे समुदायों का क्या होगा? मुख्यमंत्री बनते ही आदित्यनाथ योगी के इन फैसलों पर क्या है आपकी राय? इस बार इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 25 मार्च शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811 7000 या 1800 102 7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
दिन भर सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। साल 1977 की बात है। 1977 के चुनाव में भारी विजय दर्ज करने के बाद आज ही के दिन यानी 24 मार्च 1977 को भारत में पहले गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने शपथ ली। जनता पार्टी की उस सरकार में कौन कौन शामिल थे और किस तरह टकराव की वजह से सिर्फ 27 महीने में उस सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, बता रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
जब जयप्रकाश नारायण नवनिर्वाचित जनता पार्टी सदस्यों को राजघाट पर ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की शपथ दिला रहे थे, प्रधानमंत्री पद के लिए दौड़ का खेल शुरू हो चुका था। नेतृत्व की दौड़ में थे मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। ऐसा लगता था कि बहुमत जगजीवन राम की तरफ था, लेकिन जयप्रकाश नारायण और आचार्य कृपलानी ने 82 वर्षीय मोरारजी देसाई के नाम पर मोहर लगाई। इस समय इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स के प्रमुख और जाने माने पत्रकार राम बहादुर राय उस घटनाक्रम को बहुत बारीकी से देख रहे थे।
चुनाव परिणाम के बाद बहुत ही कसमकस थी कि किसको नेता बनाएं। जनसंघ घटक ने जगजीवन राम को समर्थन देने का फैसला अपने यहाँ किया था। इन आपस में ये सहमति बनी थी कि जगजीवन राम को अगर हम नेता बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो पार्टी को 5 साल तक चलाया जा सकता है। लेकिन जगजीवन राम के साथ एक कमजोर पक्ष था। जगजीवन राम वही हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पार्लियामेंट में समर्थन किया, लिहाजा जिसने इमरजेंसी का समर्थन किया वो हमारा नेता कैसे हो सकता है। दूसरा, चौधरी चरण सिंह भी जगजीवन राम को स्वीकार करने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं थे। चौधरी चरण सिंह को दूसरे कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। सबने जब देखा कि कोई बात हल नहीं हो रही है तो जेपी को और जेबी कृपलानी को ये आग्रह किया गया कि आप लोगों से विचार विमर्श करके जो नाम घोषित कर देंगे वह हमको स्वीकार होगा। पर्दे के पीछे गतिविधियां तेज हुई और जनसंघ घटक ने भी आखिरकार जेपी की सलाह पर अंततः ये जेपी और जेबी कृपलानी ने तय किया कि मोरारजी देसाई सबसे अच्छे रहेंगे।
मोरारजी देसाई आखिरकार उस पद पर पहुंच गए थे जिस पर वो पहले 2 बार पहुंचते पहुंचते रह गए थे। जाने माने पत्रकार जनार्दन ठाकुर ने अपनी किताब ऑल द जनता मैन में लिखा था।
सेंट्रल हॉल के मंच पर ही आचार्य कृपलानी ने मोरारजी देसाई से फुसफुसाकर कहा था, आपको बाबूजी से मिलने जाना चाहिए। देसाई ने तमक कर जवाब दिया, मैं क्यों उनसे मिलने जाऊं। उधर जगजीवन राम के घर पर दूसरा ही नजारा था। उनके समर्थक गुस्से में जनता पार्टी के झंडे कुचल रहे थे। जगजीवन राम इतने गुस्से में थे कि वो हर कमरे में फर्नीचर को लात मारते हुए चिल्ला रहे थे, धोखा धोखा। जनता पार्टी के एक नेता ने उन्हें मनाने के लिए कहा, जेपी ने कहलवाया है आप जिस मंत्रालय का नाम लेंगे वो आपको मिल जाएगा। जगजीवन राम चिल्लाकर बोले थे, मुझे देने वाले जयप्रकाश नारायण कौन होते हैं। 4 दिन के नाटक के बाद जगजीवन राम मोरारजी देसाई से कोई भी पद लेने के लिए तैयार हो गए। उनको सिर्फ अपना मुंह छिपाने के लिए एक बहाना चाहिए था और वो उन्हें जेपी ने दिया। जेपी ने उन्हें फोन कर कहा, आपके सहयोग के बिना नए भारत का निर्माण संभव नहीं हो सकेगा।
इसी तरह नए भारत के निर्माण में जगजीवन राम की भागीदारी सुनिश्चित करवाई गई। लेकिन चरण सिंह को कौन मनाता, जो शुरू से ही जनता पार्टी के सबसे बड़े घटक लोक दल का नेता होने के नाते प्रधानमंत्री बनने की मंशा पाले हुए थे। इमरजेंसी के दौरान जेल गए वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र कपूर बताते हैं,
मुझे अभी तक ध्यान है कि जब वो जनता पार्टी तोड़ के प्रधानमंत्री बन गए बिना पार्लियामेंट फेस किए हुए, इंडियन एक्सप्रेस में एक बॉक्स आइटम भी छपा था जो उन्होंने कहा कि मेरी लाइफ एम्बिशन पूरा हो गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से ये कह सकता हूँ कि चरण सिंह इतने डेस्परेट थे कि प्रधानमंत्री बने कि उनके होम मिनिस्टर बनने के 2 दिन बाद जब मैं उनसे मिला तो रिस्क उस रोड में रहते थे और बैडमिंटन के कोर्ट में अपना बनियान और अंगोछा पहन के बैठे हुए थे, तो मुझे कहने लगे, देखो कपूर किसको प्रधानमंत्री बनाया है, ये तो BCR से जीत कर आया है और यहाँ पूरे यहाँ से लेके अमृतसर से लेके वहां तक सब 2-2 लाख से जीते हैं।
कागज पर तो ये बहुत अच्छा कैबिनेट था जिसमें एक ओर अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस और HM पटेल जैसे लोग थे तो दूसरी ओर मधु दंडवते, लाल कृष्ण आडवाणी और हिमवती नंदन बहुगुणा जैसे लोग भी। लेकिन दिग्गज जैसे चंद्रशेखर, नानाजी देशमुख, सुब्रमण्यम स्वामी और मधु लिमय जैसे लोग इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना पाए थे। बाद में इसका खामियाजा जनता पार्टी को भुगतना पड़ा।
डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जब हार्वर्ड से यहाँ आए थे IIT में प्रोफेसर होकर के, तो वो जनसंघ से जुड़े और नानाजी देशमुख के वो करीब थे। इमरजेंसी के खिलाफ जो लोकतंत्र की लड़ाई थी उसके वो नायक थे। उनको ये लगता था कि मुझे विदेश मंत्री होना चाहिए था। मोरारजी देसाई ने डॉक्टर स्वामी की इस आकांक्षा को उनकी कमजोरी में बदल दिया। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने मुझे बहुत बाद में मुझे कहा, मुझे अफसोस है कि मोरारजी देसाई ने मेरा उपयोग किया। तो जैसे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का उपयोग मुरारजी देसाई अटल बिहारी वाजपेयी की कमजोरियों को उजागर करने के लिए कर रहे थे, उसी तरह से मधुलिमय चौधरी चरण सिंह की कमजोरियों का इस्तेमाल करके सरकार को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। मधुलिमय भी सरकार से बाहर थे। अगर आप अच्युत पटवर्धन और नानाजी गोरे दोनों ने उस जनता पार्टी के झगड़े के बारे में जब लिखा है उसको अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि उसमें दोनों इस राय के हैं कि मधुलिमय पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, लेकिन अहंकार उनका बहुत ऊंचे दर्जे का था। उनके अंदर आत्मविश्वास ये था कि अगर मैं मंत्री होता तो इन समूह से बेहतर करता। नानाजी देशमुख का केस अलग है। जब इनको ये लगा कि ये जो तीन बूढ़े हैं वे आपस में लड़ मरेंगे और जनता पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा, तो उन्होंने एक फार्मूला दिया, जिनकी उम्र 60 साल हो गई है वो रिटायर हो जाए। और मैं इसका उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। उसका राजनीति ये थी कि वो ये कह रहे थे कि ये तीनों रिटायर हो जाएं और 60 से कम उम्र का व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। नानाजी देशमुख के च्वाइस थे कौन? चंद्रशेखर। अटल बिहारी वाजपेयी को ये बात पसंद नहीं थी।
जनता पार्टी को रसातल तक ले जाने में एक और शख्स की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो थे इंदिरा गांधी को रायबरेली से हराने वाले राजनारायण। बिना नागा मालिश कराने वाले राजनारायण हमेशा गलत वजहों से समाचारों में रहते थे। जनार्दन ठाकुर लिखते हैं,
राजनारायण भारत में तो जहाजों और ट्रेनों को देर कराने के लिए कुख्यात थे ही। एक बार उन्होंने कुवैत में एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में देरी करवाने की भी जुर्रत की थी। वो इसलिए कि उनका एक असिस्टेंट दौड़कर वहां के ड्यूटी फ्री से उनके लिए एक ट्रांजिस्टर खरीद कर ले आए। जहाज के कप्तान ने अपने लॉगबुक में देरी का कारण लिखा ट्रैफिक, जबकि कुवैत एयर इंडिया ने इसका कारण VVIP बताया था।
कुछ दिनों बाद मुरारजी देसाई ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल से निकाल दिया, जिसका खामियाजा उन्हें अपनी सरकार गिरवा कर देना पड़ा।
राजनारायण जी विध्वंस के नेता थे और सारी जिंदगी उन्होंने समाजवादी आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की रहनुमाई में उन्होंने किया। वो विरोध के आंदोलनों से उपजे हुए नेता थे। जब सत्ता का उनको अवसर मिला तो उन्होंने विरोध के जो जो मुद्दे थे उसको ही सरकार का भी मुद्दा बनाने की कोशिश की। मुरारजी देसाई अमेरिका गए थे, उन्हीं दिनों में राजनारायण ने शिमला में एक सभा की। सभा की अनुमति शांता कुमार की सरकार ने नहीं दी। वहां से राजनारायण और जनसंघ खेमे की टकराहट शुरू हुई। जब मुरारजी भाई अमेरिका से वापस आए तो राजनारायण जी सबको इत्र लगा रहे थे। वो मुरारजी देसाई को भी इत्र लगाने पहुंचे तो मुरारजी ने कहा कि मेरे गैरहाजिरी में तो तुम गंदगी फैला रहे थे और यहाँ तुम सुगंध फैला रहे हो, ये क्या तरीका है? संभवतः राजनारायण के अहंकार को इससे चोट लगी। मुरारजी देसाई भी अगर व्यवहार कुशल व्यक्ति होते तो राजनारायण को अलग से बुला करके कहते और कुछ समझाते तो शायद उसका ज़्यादा असर होता। ऐसी छोटी मोटी घटनाएं भारत में महाभारत का कारण बनती।
दूसरी तरफ चरण सिंह की इंदिरा गांधी के प्रति नफरत इस कदर बढ़ चुकी थी कि वो उन्हें किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करवाना चाह रहे थे।
चरण सिंह वार्ड नंबर 14 में थे तिहाड़ में। उनके साथ में प्रकाश सिंह बादल अकाली दल से और जीवन सिंह उमरंगल वो थे, और ये सारा दिन बैठ के टाइम पास करने के लिए कोर्ट पीस खेलते थे। पहली दफा मैं चरण सिंह को मिला जेल में, मुझे अपने कमरे में ले गए और क्या मैं देखता हूँ कि एक किताब पड़ी हुई है, वो मसलनी पे। कहने लगे कि देख ले तू कपूर, इंदिरा गांधी को इसी कोठड़ी में रखूंगा। चरण सिंह की अड़ियलपन से जनता पार्टी के डिस्ट्रक्शन के सीड पैदा हुए। काफी लोग ये नहीं जानते हैं कि इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी हटी और नई सरकार आ गई, इतनी भयभीत थी, इतनी डरी हुई थी, वो हिंदुस्तान छोड़ना चाहती थी। पर चरण सिंह अड़े हुए थे कि इसका पासपोर्ट मैं इम्पाउंड करूंगा और इसको मैं जेल भेजूंगा। मैं मानता हूं अगर चरण सिंह उनका पासपोर्ट इम्पाउंड ना करते और इंदिरा गांधी को जाने देते तो मेरा ख्याल है इंदिरा गांधी वापस जो जीत कर आई वो मुश्किल हो जाता।
लेकिन दूसरी तरफ जयप्रकाश नारायण थे जो 19 महीने जेल में रहने के बावजूद बिना किसी कटुता के इंदिरा गांधी के घर जाकर उन्हें ढाढ़स बंधा रहे थे कि अभी तुम्हारे राजनीतिक जीवन का अंत नहीं हुआ है।
विपुल जयकर ने भी ये कहा है कि इंदिरा गांधी उन दिनों नर्वस ही नहीं थी, हिस्टीरिया का जो दौरा होता है उस तरह के दौरे से गुजर रही थी, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि संजय गांधी को पकड़ करके और सार्वजनिक रूप से उनका उसी तरह से नसबंदी की जाएगी जैसे उन्होंने दूसरे लोगों की करवाई थी। जेपी को ये सूचनाएं भी मिली और जेपी का जो मानवीय पक्ष था वो भी काम कर रहा था। जेपी गए हैं, इंदिरा गांधी से भेंट की है, इंदिरा गांधी से ये पूछा है कि प्रधानमंत्री न रहने पर तुम्हारा खर्च वगैरह कैसे चलेगा। तो इंदिरा गांधी ने उनको ये बताया कि हमको जो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकों से जो रॉयल्टी आती है, यानी जो आमदनी के जरिए थे, उसके बारे में बताया। जेपी ने एक बयान भी दिया, इंदिरा गांधी का राजनीतिक भविष्य समाप्त नहीं हुआ है, वो है, और इसे जनता पार्टी के नेताओं को समझना चाहिए।
विडंबना यह रही कि जनता पार्टी को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जयप्रकाश नारायण को जनता पार्टी और उसके नेतृत्व ने हाशिए पर ला दिया। एक बार मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर ने मोरारजी देसाई से पूछा था कि आप जेपी की सलाह लेने उनसे मिलने क्यों नहीं जाते, तो उनका जवाब था, जेपी गांधी हैं क्या?
जेपी वो समझते थे कि पॉपुलैरिटी में उनसे ज्यादा है और वो खुद चाहते कि मैं पॉपुलर हुए नहीं इतने, इसलिए वो कुछ जेपी को मानते नहीं थे। मैंने बल्कि कहा एक दफ़ा कि मैं अभी पटना में था तो जेपी बहुत नाराज थे, देखो क्या हो रहा है हिंदुस्तान का, देश का। मैंने कहा मुरारजी भाई आपको जाना चाहिए पटने, मैं तो कभी गांधी को मिलने नहीं गया था, तो ये क्या है? मैंने कहा नहीं, जेपी की मूवमेंट तो उसका क्या ठीक है, जेपी मूवमेंट वगैरह ये तो हम सब लोगों ने भी तो कुछ किया वगैरह।
सत्ता में आने के मात्र 2 साल 3 महीनों बाद मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा। उनके बाद प्रधानमंत्री बने चरण सिंह भी सिर्फ 6 महीने तक ही प्रधानमंत्री रह पाए। 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी की दोबारा वापसी हुई और 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी का रामलीला मैदान में कहा गया जुमला गलत साबित हुआ कि जो लोग अपने को भारत का पर्यायवाची कहते थे उन्हें भारत की जनता ने इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
और अब खेल जगत की हलचल बताने के लिए राखी शर्मा स्टूडियो में आ चुकी हैं। राखी, क्या हो रहा है आज?
जी, कल से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मौजूदा 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का 4था और निर्णायक मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा। हालांकि कंधे में चोट के चलते भारतीय कप्तान विराट कोहली के इस टेस्ट में खेलने पर संशय बना हुआ है। कल मैच शुरू होने से पहले उनकी फिटनेस पर विचार किया जाएगा। विराट ने भी साफ किया है कि वो 100% फिट होने की स्थिति में ही इस मैच में उतरेंगे। उनके कवर के रूप में हालांकि श्रेयस अय्यर धर्मशाला पहुंच चुके हैं। 21 साल के श्रेयस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभ्यास मैच में दोहरा शतक जमाया था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के तेज और स्पिन दोनों ही तरह के गेंदबाजों का खूबसूरती से सामना किया था। इसके अलावा मोहम्मद शमी भी धर्मशाला टीम के साथ जुड़ चुके हैं। और वहीं करीब 9 दिन पहले आईसीसी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले शशांक मनोहर अपना फैसला वापस लेने के लिए तैयार हो गए हैं। इस बात की जानकारी आज आईसीसी ने दी। आईसीसी बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित कर उनसे आग्रह किया कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें। शशांक मनोहर ने इसी महीने 15 मार्च को व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा देने की घोषणा की थी। उनके इस कदम से सभी को हैरानी हुई थी क्योंकि इस पद पर आए उन्हें सिर्फ 8 महीने हुए थे जबकि उनका कार्यकाल 2 साल का था। मनोहर मई 2016 में निर्विरोध आईसीसी अध्यक्ष चुने गए थे।
खेल समाचार सुना रही थी राखी शर्मा और इसके साथ ही वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन पहले विश्व समाचार एक बार फिर सुनेंगे हरिता कांडपाल से।
बीबीसी समाचार। एयर इंडिया के कर्मचारी पर हमला करने के आरोप में शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ पर एयर इंडिया और फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने प्रतिबंध लगा दिया है। लंदन में पुलिस ने बुधवार को संसद के सामने हुए हमले को अंजाम देने वाले संदिग्ध के साथियों को पहचानने में मदद के लिए लोगों से अपील की है। तुर्की से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक एजियन सागर पर पार कर ग्रीस के सैमोस द्वीप जा रही एक नाव में सवार कम से कम 11 प्रवासी डूब गए हैं। तुर्की के तटरक्षक दल ने 7 लोगों को बचाया लेकिन 4 लोगों की तलाश जारी है। 2011 में अरब बसंत क्रांति के दौरान प्रदर्शनकारियों की हत्या करवाने के आरोप में बरी किए गए मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक को रिहा किया गया। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे शाकिर आलम। हमारा अगला प्रसारण नमस्कार भारत भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।